سرخیوں میں ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष 2025 के अंतर्गत सुनिए रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
नमस्कार, स्वागत है आपका सुर्खियों में। जब हम एक नए वर्ष की दहलीज पर खड़े हैं तो साल 2025 को सिर्फ आर्थिक विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, बल्कि उस साल के रूप में याद किया जाएगा जब भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को नए सिरे से परिभाषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को साफ साफ संदेश दिया कि हमारी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा और आतंकवाद का जवाब मजबूती, निर्णायक तरीके और अपनी शर्तों पर दिया जाएगा। और इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला साहब। बहुत बहुत स्वागत शुक्ला साहब आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, मेरा सौभाग्य है।
साल 2025 को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सोच का टर्निंग प्वाइंट कहा जा रहा है। आपके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस साल सबसे बड़ा मूलभूत बदलाव क्या हुआ?
देखिए, हम अपना मुंह मियां मिट्ठू क्यों बने। ऑस्ट्रेलिया में जो सामरिक विषय हैं उन पर चर्चा करने वाली एक बड़ी प्रसिद्ध इकाई है जिसे कहते हैं लोई इंस्टीट्यूट। वो हर साल जो रक्षा शक्तियां हैं, डिफेंस पावर्स, उनका आकलन करती हैं। साल हमारी रैंकिंग उन्होंने नंबर 3 पे डाली। देखिए कितना महत्वपूर्ण ये है। एज ए डिफेंस पावर दे रैंक्ड अस नंबर 3 इन अ कॉम्प्रिहेंसिव सेंस,
पूरी दुनिया में,
पूरी दुनिया में। सो इट इज अमेरिका, चाइना एंड इंडिया। और फिर मेरे दिल ख्याल आया कि साहब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तो चौथी बड़ी है, बट एज ए डिफेंस पावर वी आर नंबर 3। और मेरे समझ में इट इज लार्जली ड्यू टू ऑप सिंदूर।
आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा।
ऑपरेशन सिंदूर में देखा मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए अगर हम आत्मनिर्भर न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता बिना रुकावट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले हैं, उसके नतीजे नजर आ रहे हैं।
डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बहुत जबरदस्त तरीके से भारत को मिली है। और दरअसल प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर भी 5 नए नॉर्मल की बात की है। पहला है सख्त जवाब, दूसरा परमाणु धमकी की राजनीति नहीं, तीसरा आतंकियों और उनके समर्थकों में कोई फर्क नहीं, चौथा पहले आतंक खत्म फिर संवाद, और पांचवा संप्रभुता पर जीरो समझौता। शुक्ला सर, ये सिद्धांत भारत की पहले की नीति से किस तरीके से आपको अलग दिखते हैं?
देखिए, इस तरह से भिन्न है, जो परमाणु जो हथियार हैं उसको लेकर जो एक स्कूली झांसा था, स्कूल बॉय ब्लफ कि साहब देखिए हमारे पास हथियार हैं, हम आतंक आप पर करेंगे और अगर आप जवाबी हमला करेंगे तो वी विल वेव द न्यूक्लियर रैटल और आप डर जाएंगे। हमने इस बार कहा कि ये झांसा है, आपके पास हथियार हैं परमाणु, हमारे पास भी हैं और हम जानते हैं उसकी रेड लाइंस क्या हैं। और देखिए वो कितना उससे डर गए, वो जो पूरा 27वीं जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 27th अमेंडमेंट हुआ है, फील्ड मार्शल साहब ने खुद को फील्ड मार्शल बना दिया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये सब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है और हमें जो अपनी जो रक्षा शक्ति है उसे और मजबूत करना है। तो मेरे ख्याल से 2025 में आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, दीज न्यू नॉर्मल्स इन आवर स्ट्रेटेजिक आउटलुक, जो हमारी सामरिक दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आ रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, निजी क्षेत्र को लाना आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, ये सब जो है इन सब से नींव डल रही है सुदृढ़ और सुरक्षित भारत की। भारत सुदृढ़ होगा और सुरक्षित भी होगा, और अगर हम विवेक और दृढ़ता से हम काम लें तो ये भारत विकसित होगा, विश्व बंधु होगा और सुरक्षित शक्तिशाली भारत होगा। ये मेरे ख्याल से 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि रणनीतिक संयम की जगह अब दरअसल रणनीतिक दृढ़ता ने ले ली है, यानी आतंक और बातचीत, आतंक और व्यापार अब साथ नहीं चल सकती है।
बिल्कुल सही फरमाया और बड़े अच्छे शब्दों में आपने विश्लेषण किया जिस तरह से हमारी नीति, विदेश रक्षा नीति अब उभर रही है, और इसका एक प्रमुख केंद्र बिंदु है ये स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो हमारा, जिसको हमने 10 साल पहले शुरू किया। अब इसमें से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कमाल कर रहे हैं कुछ क्षेत्रों में, जैसे AI, स्पेस, क्वांटम। देखिए, इस बार आत्मनिर्भरता इन डिफेंस में मूल रूप से परिवर्तन क्या हुआ है। पहले हमारी जितनी आत्मनिर्भरता थी उसका आधार था हमारे डिफेंस PSUs, इस बार हम निजी क्षेत्र को लाए हैं, स्टार्टअप्स को लाए हैं, तो ये जो है एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। अब हमें तीसरा काम क्या करना है, जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि जो नियमों का जाल हमने बिछा रखा है, वी हैव टू डीरेगुलेट। इफ वी डीरेगुलेट, ये जो प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप्स, इसकी ऊर्जा और बढ़ेगी, बाजार बनेगा, और उस बाजार से जब हमारा ये रक्षा बाजार ये चमकेगा तो हमारी जो शक्ति है और उभर के आएगी।
तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से ही भारत का अब अगला भाग्योदय होने जा रहा
जी,
है।
जी बहुत बढ़िया
शुक्ला साहब,
आत्मनिर्भरता का जो सफर है ना, मैं आपको एक मिसाल दूं, जो तीन सर्विसेज हैं, मैं आर्मी का हूं लेकिन मैं सबसे पहले ये मानूंगा कि ये जो सफर है इसमें सबसे आगे है हमारी नौसेना। इस साल ये जो क्या था, INS उदयगिरी, इट वॉज दी 100th शिप विच वॉज कमीशन बाई ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह, और नौसेना ने ऑटोनमस मैरिटाइम शिपयार्ड इस साल उसकी नींव रखी। देखिए, जो पूरा रक्षा का खेल है वो ऑटोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, मिलिट्री ऑटोनॉमी, और ऑटोनमस मैरिटाइम शिपयार्ड इस साल इनॉग्रेट हुआ है नौसेना के अधीन। तो आत्मनिर्भरता में हम तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेनाओं में अगर सबसे अग्रिम कोई सेना है वो है नौसेना, और उसकी दाद देनी पड़ेगी।
बिल्कुल, हम कुछ आंकड़ों की बात कर लें। साल 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन 1.54 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। साथ ही साल 2023-24 में भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,27,434 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो 2014-15 में मात्र 46,000 रुपए था, और उससे अगर हम तुलना करें तो ये 174% की वृद्धि है पिछले 10-11 वर्षों में। करीब 16,000 MSME स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाते हुए देश की रक्षा आत्मनिर्भरता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अभी आप इसकी चर्चा भी कर रहे थे कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स आए हैं, MSME आए हैं, उनसे बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला है, एक पुश मिला है। भारत का रक्षा निर्यात साल 2024-25 में रिकॉर्ड 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो 2014 में 1,000 करोड़ रुपए से भी बेहद कम था। कहां 1,000 से भी कम और कहां 23,622 करोड़ रुपए। सवाल मेरा इसी पर है, आपने तो लंबे समय तक भारतीय सेना में काम किया है, देखा है, नजदीक से समझा है। एक वक्त था जबकि छोटे छोटे हथियारों के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज क्या स्थिति बदली है? भारत किस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस इक्विपमेंट, कौन कौन से देश हैं वो?
तो जो आपने ये आंकड़े रखे इसमें मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण, उसमें बहुत बहुत प्रगति हुई है। जो आपने आंकड़े रखे, मेरे ख्याल से जो इंडियन वेंडर्स हैं उनके साथ हमने 120 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं अनुबंध, जिसे आप कह रहे थे 1,27,000।
जी जी,
बहुत बड़ा विशाल कदम है। और साथ साथ जो फॉरेन वेंडर्स हैं, क्योंकि कुछ हमें जो कहते हैं ऑपरेशनल गैप्स, हमारे पास आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जो उपलब्धियां नहीं है, हमें कुछ फॉरेन वेंडर्स के साथ भी हमने 1,24,000 करोड़ के अनुबंध साइन किए हैं। बट जो आपने दूसरी बात कही ना, जो रक्षा निर्यात है
जी,
उसमें तो कमाल हुआ है। 25,000 करोड़ इस साल, 2026 तक 30,000 करोड़, और 2028 तक 50,000 करोड़। 100 से अधिक देश हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, बट जैसे वियतनाम, फिलीपींस, ब्रह्मोस हमने वहां दी है, अफ्रीका के कई देश हैं। जो निर्यात है ये मैंने पहले अपने 40 साल में कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, हम बस आयात ही करते रहते। और जो बड़ा एक बदलाव ये आ रहा है कि भाई सोच में, दैट डिफेंस इज ऑल्सो अ टूल फॉर रेवेन्यू जेनरेशन, इससे रेवेन्यू आएगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। सो डिफेंस नॉट ओनली फॉर नेशनल सिक्योरिटी बट ऑल्सो एज एन इकोनॉमिक टूल।
साल 2047 यानी आजाद भारत जब 100 वर्ष का होगा उस समय पूरी तरीके से न सिर्फ आत्मनिर्भर होंगे बल्कि हम विकसित भारत होंगे। उसमें ये जो रक्षा क्षेत्र में हमने प्रगति की है और खासतौर पर साल 2025 जिस तरीके से एक बहुत अहम साल रहा है रक्षा के लिए, वो बहुत जबरदस्त तरीके से उसमें सहयोग करने जा रहा है। और हम एक और आंकड़े दे दें कि साल 2025 में 4.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा खरीद को मंजूरी मिली है, जिसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, नौसेना के लिए राफेल एम और उन्नत निगरानी प्रणालियां शामिल हैं। इससे थल, जल और वायु तीनों सेनाएं मजबूत हुई हैं। अगर 10 साल पहले की स्थिति को आप देखें और आज की स्थिति को देखें तो बहुत शार्प डिफरेंस क्या पाते हैं आप?
जो आपने आंकड़े दिए जिस तरह से हमारी तीनों सेनाएं में मजबूती लाई जा रही है, उसके अलावा क्या हो रहा है, देखिए जो टेक्नोलॉजी मिशंस हैं, देखिए आज का जो खेल है रक्षा का वो टेक्नोलॉजी का है। उसमें जो राष्ट्रीय मिशंस हैं एआई, क्वांटम, स्पेस, उनसे अब सेनाओं को जोड़ा जा रहा है। तो जो एआई की उपलब्धि जो आपको इकोनॉमिक क्षेत्र में मिलेगी, वो आपको उसी एआई की उपलब्धि अभी आपको रक्षा क्षेत्र में मिलेगी। सो ये जो टेक्नोलॉजी मिशंस के साथ समन्वय है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, आपने सुना होगा ये सरकार ने इस बार अनुसंधान फंड लॉन्च किया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का को R&D अनुसंधान के लिए पैसा दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब अनुसंधान फंड से भी जुड़ रही है। तो जो हम अनुसंधान में जो हमारा निवेश होगा, उससे रक्षा क्षेत्र को भी फायदा होगा। तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। साथ साथ एक और बात मैं जोड़ दूं, प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म। अब जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी साहब हैं, वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर,
बहुत इंपॉर्टेंट
वही, उसमें क्या हो रहा है, देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिलेज को कम किया जाए, उनमें सरलता कैसी लाई जाए, नेशनल चैंपियंस का एक सपना हम खड़ा कर रहे हैं।
और ये नीतिगत स्तर पे जो बदलाव हुए हैं सुधारों की दिशा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में भी कहा है।
जी जी,
डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया ये नारा नहीं था, हमने इसके लिए बजट पॉलिसी में जो परिवर्तन करना था, जो नए इनिशिएटिव ले रहे थे, वो नए इनिशिएटिव लिए। और सबसे बड़ी बात, क्लियर कट विजन के साथ हमने देश में मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक दशक में डिफेंस का बजट लगभग पहले से 3 गुना हुआ है। डिफेंस प्रोडक्शन में करीब करीब 250% वृद्धि हुई है। 11 वर्षों में डिफेंस एक्सपोर्ट 30 गुना से भी ज्यादा बढ़ा। डिफेंस एक्सपोर्ट आज दुनिया के करीब 100 देशों तक हम पहुंचे। इतना ही नहीं, हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी डिफेंस के दरवाजे खोल दिए हैं और आज भारत का प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहा है।
शुक्ला सर, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में भी बड़े निवेश आए हैं और अब दुनिया के जो निवेशक हैं वो भारत में डिफेंस सेक्टर में निवेश करना चाह रहे हैं। इससे आने वाले समय में और क्या मदद हमें मिल सकती है?
देखिए, आज जो रक्षा क्षेत्र है उसमें जैसे अमरीकी जो मिलिट्री है वो इतनी प्रखर क्यों है, क्योंकि उसके जो लिंक्स हैं वो सिलिकॉन वैली के साथ हैं। तो ये जो दो कॉरिडोर्स हैं ये सिलिकॉन वैली के रूप में उभरेंगे। जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, जो स्टार्टअप्स हैं, वो जो चमत्कार लाएंगे वो जो उत्तर प्रदेश कॉरिडोर है और तमिलनाडु कॉरिडोर है, उस इनोवेशन के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जब भारतीय सेना, तीनों सेनाएं जब ये दो डिफेंस कॉरिडोर्स के साथ जुड़ेंगी तो हमें मिलेगा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इसीलिए ये दो कॉरिडोर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको दो चीजें और बता दूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए दिसंबर 2025 में रक्षा मंत्री जी ने 125 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, 5,000 करोड़, 28 सड़कें, 98 ब्रिजेस, श्योक टनल, ये गलवान के बाद सबसे बड़ा निवेश है एलएसी में। आर्मी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है 2,000 करोड़ का, ड्रोन्स के बारे में, हर कंधे पर ड्रोन, हमारा हर सैनिक होगा उसके पास एक ड्रोन होगा। तो दीज आर वेरी गुड साइंस इन डिफेंस, वी हैव टू रियली टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रिकॉर्ड उत्पादन और रिकॉर्ड निर्यात, इस विषय पर बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आमंत्रित किया।
विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष 2025 के अंतर्गत आप सुन रहे थे रक्षा क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में।